स्वामी जी महाराज ने कहा कि भला काम करने से आदमी भला नहीं होता है, ये भी एक भ्रम है। भला काम करने के साथ साथ बुराई भी जीवन में रहती है, तो भला काम करने से आदमी भला नहीं होता है, दमपूर्वक भी भलाई करता रहता है, लेकिन बुराई के छोड़ने से आदमी भला होता है। मानव सेवासन का सिद्धांत, तो कौन सा सत्य स्वीकार करो, ये सत्य स्वीकार करो, अपने लिए व्रत स्वीकार करो कि हम प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, निज विवेक का अनादर नहीं करेंगे। यह व्रत जो है, यह सत्य जो है, मानव मात्र के लिए एक समान आवश्यक है। दुनिया का कोई भी मत हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी देश युग हो, आज के लिए नहीं, पहले भी और आगे भी, किसी युग का, किसी देश का, किसी मजहब का, किसी मत का, किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, अगर वह निज विवेक का अनादर करता रहेगा तो उसका उद्धार नहीं होगा। और जिस किसी ने इस व्रत को ठान लिया कि हम निज विवेक का अनादर नहीं करेंगे, उसके जीवन में से असत्य निकल जाएगा। विवेक के प्रकाश में जो जो सही दिखाई देता है तो करेंगे, और जो नहीं सही नहीं मालूम होता है उसे नहीं करेंगे। तो इसमें से ज्ञान का बहुत बड़ा प्रभाव अपने जीवन पर आ जाएगा। कैसे? निज विवेक के प्रकाश में क्या हम सब भाई बहनों को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि शरीर पहले जैसा था आज नहीं है वैसा? दिखता है कि नहीं? दिखता है। तो उसमें से ये कंक्लूजन निकलेगा, उसमें से यह निष्कर्ष निकलेगा कि आज जैसा है आगे नहीं रहेगा, ठीक है। और बहुत से शरीर जो मेरे सामने बड़े हृष्ट पुष्ट थे आज नहीं हैं, ठीक। तो जैसे शरीरों को बनते बदलते हुए, बिगड़ते हुए, मिटते हुए हम लोग देखते हैं, तो उसी हिसाब से ये शरीर भी बन गया है, बदल रहा है, बिगड़ रहा है, मिट जाएगा। निज विवेक का प्रकाश इस बात को बताता है कि नहीं? एक बार एक साधक ने कहा कि भाई उधर से ये सब समाचार संदेश आता रहता तो हम शरीर के मोह में क्यों पड़ते। तो एक संत ने कहा कि चिट्ठियां तो बहुत बार आई आपके पास, आपने पढ़ा ही नहीं। कैसे? अरे भाई, दांत एक टूट करके गिर गया, ये संवाद नहीं आया कि शरीर भी गिर जाएगा? संवाद तो उधर से आता ही रहता है, समाचार भेजने वाले भेजते ही रहते हैं, आप सुनते कहां है? तो कौन सा सत्य स्वीकार करो कि निज विवेक का अनादर नहीं करना है। तीसरी बात, निज विवेक का अनादर नहीं करना है। और तीसरी बात क्या है? तो तीसरी बात यह है कि ईश्वर विश्वास में विकल्प नहीं करना है। ईश्वर विश्वास में विकल्प रखना है कि नहीं है, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, क्या जाने किसी को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आज तक किसी ने पाया है कि नहीं पाया है। तो इस प्रकार का जो अनेक संदेहात्मक धारणाएं अपने जीवन में हैं, उनको छोड़ देना पड़ेगा। तो तीन ही बातें हुई, प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करना, निज विवेक का अनादर नहीं करना, प्रभु विश्वास में विकल्प नहीं करना। ये तीन बातें ऐसी हैं कि दुनिया के किसी युग किसी देश किसी मजहब का व्यक्ति यदि मानेगा तो उसकी सफलता जरूर होगी। और ये बातें जो मानने की हैं, ये मानने वाली बातें शरीर धर्म पर आधारित नहीं है, ये हाथ पांव आंख नाक कान का निर्णय नहीं है। ये निर्णय किसका है? यह निर्णय स्व का है। अपने द्वारा मैंने यह सत्य स्वीकार किया। अब इसको दूसरे शब्दों में कह दो, फिर और किन किन रूपों में हम कह सकते हैं? जैसे ऐसे देखिए कि शरीर और संसार का अविभाज्य संबंध है, ये तो प्राकृतिक बात है ना, वैज्ञानिक तथ्य है कि जिन धातुओं से संसार बना है उन्हीं धातुओं से शरीर बना है। तो शरीर और संसार का अविभाज्य संबंध है। इस अविभाज्य संबंध को हम जब स्वीकार करेंगे तो अर्थ क्या होगा? अर्थ उसका ये निकलेगा कि एक शरीर की रक्षा और भरण पोषण का जितना ख्याल मुझको है उससे कम ख्याल अन्य शरीरों के लिए नहीं रहेगा, कम से कम उतना ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सत्य की स्वीकृति का प्रभाव होगा कि आपके हृदय की संकीर्णता टूट जाएगी। दूसरी बात क्या है कि जो भी कुछ सामग्री मिली है अपने को, सामर्थ्य मिली है अपने को, वह अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करना होता है। अपनी नहीं है, क्यों नहीं है अपनी? कि हम जब तक चाहें तब तक नहीं रख सकते, जैसा चाहें वैसा नहीं रख सकते, ये सब मिली हुई है, निजी नहीं है। और अपने काम आने वाली नहीं है, क्यों? मेरे काम तो आएगी परम शांति, मेरे काम आने वाली बात है जीवन मुक्ति, मेरे काम आने वाली बात है भगवत भक्ति। तो संसार में कुछ ऐसा नहीं है जो मेरे काम आवे। तो सभी साधकों के लिए विश्वास पथ के और विचार पथ के और कर्म पथ के जितने भी साधक होंगे अलग अलग ढंग के, सबके लिए आवश्यक बात होगी कि वह शरीर और संसार से अपने को अलग स्वीकार करे। तो शरीर और संसार जो है वह अपना नहीं है और अपने काम नहीं आता है, इस सत्य को स्वीकार करो। और मेरा नित्य संबंध केवल परमात्मा से है और किसी से मेरा नित्य संबंध नहीं है, यह सत्य सबके लिए समान रूप से आवश्यक है। तो मिली हुई वस्तु सामर्थ्य इत्यादि मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, और मेरे लिए केवल परमात्मा है और उस परमात्मा का प्रेम ही मेरा जीवन है। इसमें से कोई भी वाक्य सत्य के रूप में आप स्वीकार कर लें तो आपके जीवन की समस्याएं हल हो जाएंगी। कई रूपों में महाराज जी ने कहा, सेवा करने के लिए सबको अपना मानो, ये भौतिक दर्शन का सत्य है। सुख लेने के लिए किसी को अपना मत मानो, अध्यात्म दर्शन का सत्य है। प्रेमी होने के लिए परमात्मा को अपना मानो, आस्तिक दर्शन का सत्य है। तो भाई ने पूछा कि वह कौन सा सत्य है कि जिसको स्वीकार करने मात्र से जीवन सफल हो जाता है। तो सेवा करने के लिए सभी को अपना मानो, ये भौतिक दर्शन का सत्य है। जब हम सभी को अपना नहीं मानते हैं तो भेदभाव ईर्ष्या द्वेष संघर्ष इत्यादि उत्पन्न होते हैं, न मानने का तो, न मानना मनुष्य के जीवन का तो कोई ध्येय नहीं है। अगर मानना है सत्य को तो भौतिक दर्शन के अनुसार सभी को अपना मानव सेवा करने के लिए और शरीर और संसार की आसक्ति से मुक्त होना चाहते हो, देहातीत जीवन में प्रवेश करके सदा सदा के लिए कृतकृत्य होना चाहते हो, तो स्वयं सुख लेने के लिए इस शरीर को भी अपना न माना जाए, किसी को भी अपना न माना जाए। तो एक सत्य क्या है, सेवा करने के लिए सबको अपना मानो। दूसरा क्या है कि सुख लेने के लिए किसी को अपना मत मानो। तीसरी बात क्या है, प्रेमी होने के लिए केवल प्रभु को अपना मानो। सत्य है, जिसको जो अच्छा लगे स्वीकार करो, तो इस स्वीकृति मात्र से जीवन बदलता है। तो सत्य को स्वीकार करना व्यक्ति का पुरुषार्थ है। सत्य को स्वीकार करना व्यक्ति का पुरुषार्थ है और उस स्वीकृति के परिणाम से अहम का परिवर्तित हो जाना, यह मनुष्य के जीवन की महिमा अपने आप होता है। तो मानव सेवा संघ में मानव जीवन का महत्व साधक भाई बहनों के सामने रखने की बात है। आप अपने जीवन का महत्व जब स्वीकार करेंगे तो सारी बातें आपके काम आएंगी। अगर जीवन का महत्व स्वीकार नहीं करेंगे तो सब ग्रंथ और सब संत और सब उपदेश जहां के तहां ज्यों के त्यों रहेगा, क्योंकि यह तो सत्य का प्रकाश है, ये तो मिटेगा नहीं। लेकिन ये सब के होते हुए भी अपने भीतर अंधकार ही छाया रहेगा। अब कोई कहे कि यहाँ से उतनी ऊंचाई पर बड़ा अच्छा मंदिर है, उसमें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, तो अगर ऐसी कोई बात कह दी जाए तो अब सब बैठ बैठ करके अपना अपना बल तौलेंगे कि देखें हम उतनी ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं कि नहीं। तो जिसमें ऐसा विश्वास लगेगा कि हम तो चढ़ जाएंगे तो वो तो दौड़ के चढ़ जाएगा, और जो ऐसा सोचेगा कि अरे भाई हमको तो तकलीफ है, हमारे तो हार्ट में खराबी है, तो मेरे तो पांव से नहीं चला जाएगा, तो पहले ही से जो अपनी असमर्थता स्वीकार करके बैठ जाएगा वो तो उठेगा ही नहीं, पहले ही से हार मान जाएगा। मानव सेवा संघ के प्रणेता संत ने हम लोगों को यह प्रेरणा दी कि भाई मेरे, दुनिया की और सब अन्य बातों में तुम घोर पराधीन हो, तुम्हारी कोई स्वाधीनता नहीं है, लेकिन सत्य से अभिन्न होने में कोई भी भाई कोई भी बहन अनाधिकारी नहीं है, असमर्थ नहीं है, निराश मत होना कभी भी। शरीर में बल नहीं है तो कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि शरीर के बल से सत्य नहीं पकड़ा जाता, ठीक है ना? जो शरीर के बल से पकड़ा जा सकेगा वो शरीर से घटिया होगा कि बढ़िया होगा? शरीर के बल से जिसको पकड़िएगा वो शरीर से तो घटिया ही होगा ना। तो जो जीवन आपको चाहिए वो शरीर से बढ़िया चाहिए कि घटिया चाहिए? बढ़िया चाहिए। इसलिए जो जीवन आपको चाहिए वो शरीर के बल से पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए शरीर दुर्बल हो गया, असमर्थ हो गया, इनवैलिड हो गया, कुछ भी हो गया। तो सत्य से अभिन्न होने में निराश नहीं होना है, क्यों? क्योंकि उसमें शरीर के बल की आवश्यकता ही नहीं है। तो सत्य को स्वीकार करो, जाने हुए असत्य का त्याग करो, और अहम में परिवर्तन आ गया, और वहां परिवर्तन आ जाता है तो धन की कमी और तन के बल की कमी और कुटुंबी जनों की कमी और अच्छी परिस्थितियों की कमी कोई अर्थ ही नहीं रखती है, इसका कोई प्रभाव ही अपने पर नहीं होता है। उदाहरण मैंने आप लोगों को एक बार सुनाया था कि चंबल तट पर स्वामी जी महाराज के पास एक साधक को लाया गया था भेंट कराने के लिए, बड़े आनंद में थे, वो साधक बड़े आनंद में थे और उनका दोनों हाथ भी यहाँ से कटा हुआ था, दोनों पांव भी कटा हुआ था। दोनों हाथ भी नहीं थे, दोनों पांव भी नहीं थे। साधक बड़े आनंद में थे, वो आनंद कहाँ से आ गया? शरीर का मोह मिट गया तो आनंद ही आनंद है, सुख भोग की आसक्ति छूट गई तो आनंद ही आनंद है, संत की वाणी में भगवत महिमा में विश्वास जम गया तो आनंद ही आनंद है। हाथ पांव का कट जाना कोई अर्थ ही नहीं रखता। स्वामी महाराज ने पूछा, समाचार पूछा, परिचय पूछा, तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने कहा था चारों धाम का दर्शन कराना, तो तीन धाम हो चुके हैं और बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। जा रहे कैसे जाते हो भाई, कैसे यात्रा कर रहे हो, तो आपके पास कैसे आ गया? ऐसे ही करता हूँ। ट्रेन में बैठे हुए जा रहे थे और उधर से ट्रेन निकलती थी, उसमें से उसमें और भी दूसरे स्वामी जी महाराज के प्रेमी मित्र भक्तजन थे, चंबल तट पर गुफा पर जा रहे थे स्वामी जी से मिलने, तो इस मस्त आदमी को देख करके उनको आनंद आ गया। तो उन साथियों ने कहा कि यहाँ गुफा पर एक बड़े अच्छे महात्मा रहते हैं, बड़े ऊंचे महात्मा हैं, तो आपको भेंट करने का मन हो तो हम लोग ले चले। तो उन्होंने कहा ले चलो। तो किसी ने पीठ पर लाद करके ट्रेन में से उतार लिया और किसी ने पीठ पर लाद करके ऊपर गुफा में पहुंचा दिया। स्वामी जी के पास पहुंच गए और खूब बातचीत हो गई, आनंद हो गया। और स्नान कैसे करते हो और खाना कैसे खाते हो और क्या करते हो, उसने बड़े मजे में स्वामी जी महाराज को सब बात बता दी। हमारे गुरु ने ऐसे ऐसे कह दिया था और हम बड़े आनंद से घूम रहे हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। तो शरीर धर्म नहीं है, शांति मुक्ति भक्ति देहातीत जीवन की शांति अमरत्व की का आनंद, ये सब देह धर्म है ही नहीं है। तो देह से इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो अच्छा हो तो क्या और बीमार हो तो क्या और कमजोर हो तो क्या और कट गया तो क्या, और जब जब शरीर ही आवश्यक नहीं है उस अविनाशी जीवन के लिए, तो इस शरीर से दूर जो अन्य संगी साथी दिखाई देते हैं उनकी जरूरत क्या पड़ेगी, और इस शरीर से दूर जो दूसरे सामान है उनकी क्या जरूरत पड़ेगी। तो इन सब बातों की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं रहती है। सत्य की स्वीकृति मात्र से अपने में परिवर्तन होता है और अपने में से असत के प्रति खिंचाव छूट गया तो उसके बाद आप और कुछ जानिए अथवा मत जानिए, मानिए अथवा मत मानिए, ये असत्य का पर्दा हट गया, विकार मिट गए, तो जो सदा सदा से है वह प्रकट हो ही जाता है, उसका आनंद उसको आ ही जाता है, फिर और कुछ कहना सुनना शेष नहीं रहता। इसलिए मानव सेवा संघ के सिद्धांत में सत्य की स्वीकृति पर बहुत जोर डाला गया। स्वामी जी महाराज ने बारंबार इस बात को दोहराया है कि भाई जीवन में सफलता चाहते हो तो जीवन के सत्य को स्वीकार करो। मानव सेवा संघ कहता है कि उपरोक्त सत्य की प्राप्ति में देश काल की दूरी नहीं है। इसका इसमें हमारे भाई बहनों को संदेह नहीं होना चाहिए। सत्य की प्राप्ति में देश काल की दूरी नहीं होती। सभी अनुभवी संतों ने कहा है, ग्रंथों में भी लिखा है। हम लोगों के लिए मानने की बात जो है वो ये है कि ऐसा सोच करके देखिए कि सत्य कहो और नित्य तत्व कहो और परमात्मा कहो, एक है कि दो है? एक ही है ना। ज्ञान की दृष्टि से उसको सत्य कहते हैं और भक्तजन की दृष्टि से उसको भगवान कहते हैं, सत्य तो एक ही है। तो महाराज जी का तर्क इतना बढ़िया है, वो कहते हैं कि अगर आज तुम उस नित्य तत्व से, उस सत्य से, उस जीवन से देश काल की दूरी मान लोगे, ऐसा मान लो कि आज वो मुझसे दूर है और कल मेरे नजदीक होगा मेरी साधना से, तो आज जो देश काल की दूरी पर हो सकता है, किसी भी क्षण में जो दूर हो सकता है, तो फिर आगे भी दूर हो जाएगा तो क्या करोगे जी? एक बात। दूसरी बात सोचो कि हम लोग उसको कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, तो जो सर्वव्यापी है वो सब स्थान में है कि नहीं? अगर उसको देश की दूरी पर मानोगे, स्थान की दूरी पर मानोगे, तो उसकी सर्वव्यापकता का विशेषण झूठा हो जाएगा जी? तो हम लोग ऐसा नहीं मान सकते हैं कि परमात्मा से, किसी भी भगवान से, किसी भी भक्त का देश स्थान की दूरी है। मान सकेंगे? अगर ऐसा मानिएगा कि मैं यहाँ हूँ और मेरे भगवान कहीं दूर है, ऐसा मानिएगा तो वो भगवान आपके काम नहीं आएंगे। जो आज दूर है वो कल फिर दूर हो जाएगा, हम कहाँ अकेला ही है। तो जो सत्य होता है, जो जीवन का तत्व होता है, जो भगवत तत्व है, वह कभी भी किसी भी स्थान से अनुपस्थित नहीं होता। स्थान की बात हो गई, अब काल की बात देखो कि आज तो परमात्मा मुझसे दूर है और मैं बहुत आराधना करूंगी तो कल मेरे नजदीक होगा, तो जिस परमात्मा के लिए हम लोग इस बात को मानते हैं कि वो सदैव है, सर्वकाल में है, ऐसा सबने माना है। केवल हिंदू परंपरा में, ईश्वरवाद में ये बात नहीं है। दूसरे ईश्वरवादी मजहब के लोग जो हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग भी भगवान को मानते हैं, इस्लाम में भी भगवान की सत्ता स्वीकार की जाती है, तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये तीनों ही बड़ी बड़ी जातियां संसार की ऐसी हैं कि जिन्होंने भगवत सत्ता को स्वीकार किया है। और किसी से भी पूछ लो और किसी के ग्रंथ में पढ़ के देख लो, सब जगह ये बात कही गई है कि परमात्मा उसे नहीं कहते जिससे देश काल की दूरी हो, परमात्मा उसको कहते हैं जो सर्वत्र है और सदैव है। तो इस सिद्धांत के अनुसार परमात्मा सदैव है, भूतकाल में था और वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। इसलिए मानव सेवा संघ में यह बात कही गई कि सत्य की प्राप्ति में देश काल की दूरी नहीं है। देश की दूरी मान उस सत्य का विशेषण कट जाएगा, वो काम का नहीं रहेगा। काल की दूरी मान लो तब भी उसका विशेषण घट जाएगा, वो अपने काम का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आज दूर है वो आगे भी दूर हो जाएगा, जो आज यहाँ मौजूद नहीं है वो आगे भी गैर हाजिर हो जाएगा। इसलिए जो जीवन का सत्य है, सत्य कहते ही है उसको जो देश काल की, जिससे देश काल की दूरी नहीं होती है। तो जो सर्वत्र और सदैव विद्यमान है, ऐसे सत्य के अभिलाषी हम सभी भाई बहन हैं। तो जिससे देश काल की दूरी नहीं है, उससे अभिन्न होने में पराश्रय और परिश्रम क्या लगेगा? ऐसा सोचो। बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न किया है जिज्ञासु ने। मानव सेवा संघ का सिद्धांत भी आपकी दृष्टि में स्पष्ट हो जाएगा और आपकी अपनी साधना में से भी संदेह निकल जाएगा। परिश्रम और पराश्रय दूसरे अन्य का सहारा लेना पराश्रय कहलाता है और बल लगाना परिश्रम कहलाता है। तो सत्य की अभिव्यक्ति में पराश्रय और परिश्रम नहीं है। और जब तक हम लोग पराश्रय और परिश्रम को पसंद कर रहे हैं तब तक वह अत्यंत निकट होते हुए भी अपने अनुभव में नहीं आ रहा है। ये बात समझ में आती है? पहला सत्य तो हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि उससे स्थान की दूरी भी नहीं है और काल की दूरी भी नहीं है। तो जिस समय हम लोग बैठ करके उससे अभिन्न होने के उपायों की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा करोगे तो भगवान मिलेंगे, ऐसा करोगे तो भगवान मिलेंगे, तो जिस समय हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं उस समय भी भगवान हमारे भीतर बाहर मौजूद हैं कि नहीं है? है? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं कि हम लोग उनके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं? उनको सब मालूम हो रहा है। तो अब महाराज जी की वाणी दोहरा लो। वे कहते हैं कि जो नित्य विद्यमान है, जो सदा विद्यमान है, तुम्हारे ही में है और अभी इसी क्षण में विद्यमान है, तो नित्य विद्यमान नित्य संबंधी को पुकारोगे और ढूंढने के लिए बाहर बाहर जाओगे तो उसके निकट आओगे कि उससे दूर हो जाओगे? जो अपने में विद्यमान है, इसी क्षण में प्राप्त है, उसकी प्राप्ति के लिए अगर कुछ परिश्रम करोगे तो परिश्रम करने के लिए शरीर की सहायता लेनी पड़ेगी जी। परिश्रम करने के लिए लेनी पड़ेगी ना। जैसे कोई सोचे कि हम खूब निर्जन स्थान में पैदल चलेंगे और खूब झाल मजीरा बजा करके गा करके परमात्मा को बुलाएंगे, तो गाने बजाने के लिए शरीर की सहायता लेनी पड़ेगी और निर्जन स्थान में जाने के लिए पांव की सहायता लेनी पड़ेगी, स्थान की सहायता लेनी पड़ेगी, और जब जाएंगे तो ऐसा ऐसा करेंगे तो काल का आश्रय लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो स्थान और काल और शरीर और हाथ पांव और झाल मजीरा और ये स्वर यंत्र वोकल ऑर्गन जिससे गाने बजाने का हम करते हैं उपाय, तो ये सब स्व है कि पर है? पर है। तो पर की सहायता से स्व से कैसे मिला जाएगा जी? नहीं मिलेगा ना। तो स्व में स्व है और उससे दूर होकर के पराश्रय लिया जाता है, तो पराश्रय से उससे मिलना नहीं होता जो अपने में है। और देखिए बड़ा बड़ा रहस्य है मानव सेवा संघ के सिद्धांत का। ये भाई कहते हैं पराश्रय नहीं चाहिए, ये बात तो ठीक हो गई ना। अब परिश्रम नहीं चाहिए, ये भी देख लो। तो परिश्रम तो बिना पराश्रय के हो ही नहीं सकता। जब परिश्रम करना होगा तो परिश्रम के टूल्स आपको लेने पड़ेंगे। कुछ कुछ प्राकृतिक हथियार है, कुछ बनाया हुआ है, सब समेटो। अब तो परिश्रम के लिए पराश्रय लेना पड़ता है, इसलिए पराश्रय तो कट गया तो परिश्रम भी कट गया। और सबसे भीतरी और सूक्ष्म बात क्या है कि कर्म के रूप में, चिंतन के रूप में, स्थिति के रूप में, कहीं भी मनुष्य के भीतर कुछ भी करने का संकल्प है तो करने का संकल्प सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने पर भी अहंकृति को जीवित रखता है। हाथ पांव मत हिलाइए, एकदम से शांत रहिए, चुपचाप, बिल्कुल बाहर से कुछ नहीं है, लेकिन भीतर में एक बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही शुभ संकल्प है। क्या? कि हम मन की और चित्त की चंचलता को रोक देंगे और उस स्थिरता में अवस्थित होंगे। तो हम मन और चित्त की चंचलता को रोकेंगे। अगर ये संकल्प भीतर में बना हुआ है तो अहंकृति नहीं मिटेगी। अहम स्फूर्ति होती है ना, शांति में से, स्थिरता में से एक गतिशीलता उदित होती है। तो जहां सूक्ष्म संकल्प भीतर आ गया कि हम ऐसा करेंगे करेंगे, इस संकल्प से अहम भाव भी जीवित रहेगा, अहम कृति भी होती रहेगी और अहम में इस संकल्प की पूर्ति की स्फूर्ति भी होती रहेगी। तो आपने सत्य से अभिन्न होने का अंतिम कदम क्या सुना है कि जहां सीमित अहम भाव का लोप हो जाता है वहां असीम अनंत से अभिन्नता हो जाती है। सुना है? तो क्या हो गया? संत कबीर ने कहा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ जल गलई समाना, यही तथकथनी ज्ञानी। और प्रतिभाषा है ना, ज्ञानी वो नहीं कहते हैं कबीर, बढ़िया भाषा बोलना नहीं जानते हैं, लेकिन सत्य है। जल में कुंभ, कुंभ मैंने घड़ा, मिट्टी का घड़ा, तो उसको पानी में डुबा दो तो कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल के भीतर वो घड़ा है और घड़े के भीतर भी पानी है, तो इस बाहर भी पानी है भीतर भी पानी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तो कथा ही ज्ञानी। तो मानव सेवा संघ ने सलाह क्या दी? सलाह ये दी कि पहला काम क्या करो कि अहम की अशुद्धि को मिटाने का उपाय करो। अशुद्धि कैसे मिटेगी? भाव की शुद्धि, विचार की शुद्धि, कर्म की शुद्धि, पहले इसका उपाय करो, अशुद्धि का नाश करो। तो अशुद्धि का नाश कैसे होगा? तो पहला जो तीन सत्य आपके सामने रखा गया, उन व्रतों को धारण करो। प्राप्त फल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, निज विवेक का अनादर नहीं करेंगे, ईश्वर विश्वास में विकल्प नहीं करेंगे। इन बातों को मान लीजिए तो अहम की अशुद्धि का नाश हो गया। तो क्या रह गया? तो बल का सदुपयोग रह गया, विवेक का आदर रह गया और ईश्वर विश्वास रह गया। तीन अच्छी बातें रह गई, रहने वाली बातें रह गई। तो पहले असत के त्याग से अहम शुद्ध होता है और फिर उस शुद्ध अहम में जो साधन तत्व की अभिव्यक्ति होती है, शांति आती है, स्थिरता आती है। तो ये सब जो साधन तत्व अभिव्यक्त होने लग जाए तो इनके फल का भी भोग मत करना, योग का भोग मत करना। तो बुराई का त्याग कर दिया आपने तो आप भले हो गए, और भलाई के अभिमान को भी छोड़ दिया तो अहम के लोप की तैयारी हो गई। और फिर जो अपने ही में विद्यमान है, नित्य निरंतर विद्यमान है, मेरा परम हितैषी है, मुझको खूब प्यार करने वाला है, मुझको सब प्रकार से संभालने वाला है, ऐसा जो मेरा अपना है, अपने ही में विद्यमान है, उसकी आनंददायिनी विभूतियां अपने से प्रकट होने लगती हैं। अशुद्धि का नाश होने पर फिर क्या होता है कि वह आनंद बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। उसमें कहीं भी कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, वो अपने आप से प्रस्फुटित होने वाला है। जैसे फूल की कली खिल जाए तो सुगंधी ऐसे ही वायुमंडल में फैल जाती है, उसी प्रकार से मैंने अपने जाने हुए असत का त्याग कर दिया तो मेरे भीतर जो नित्य तत्व विद्यमान है उसकी विभूतियां स्वतः ही प्रकट होने लगती हैं, अभिव्यक्त होने लगती हैं। अब वहां जाकर के एक बड़ा भारी खतरा होता है साधक के लिए कि जब उसके भीतर से शांति आती है तो उसको भासित होने लगता है। क्या बताएं, ये सब लोग बैठे हुए तो अशांति में दिन काट रहे हैं, मैं तो परम शांत हूँ। तो शांति तो नित्य तत्व है, उसका नाश कभी नहीं होगा। जब उसके चारों तरफ मैं का घेरा लग गया, गलती समझ में आ रही है? ये सब लोग तो रूखे सूखे क्रियात्मक झाल मजीरा बजाते रहते हैं, मैं तो प्रभु का बड़ा प्रेमी हूँ, मैं तो ये सब कुछ नहीं करता हूँ, मेरे हृदय में तो उनका प्रेम भरा रहता है। तो प्रेम तो अविनाशी तत्व है और सचमुच आया है उन्हीं की ओर से, दिया है उन्होंने मेरे कल्याण के लिए, जन्म जन्मान करके भोग से, कामनाओं से, तृष्णाओं से जले हुए हृदय को शांत शीतल सरस बनाने के लिए परम कृपालु ने बरसा दिया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मैं का घेरा लगा दिया, मैं बड़ा भक्त हूँ, डूब गए। तो मानव सेवा संघ ने सभी भाई बहनों को सलाह दी कि भैया सत्य से अभिन्न होने में परिश्रम और पराश्रय मत रखना, अगर परिश्रम पराश्रय की बात रखोगे तब भी सत्य से दूरी हो जाएगी, क्योंकि वो स्व में ही विद्यमान है, और परिश्रम की बात रखोगे तो तब भी स्व से दूरी हो जाएगी, क्योंकि परिश्रम जब कभी होगा तो अहंकार बुलंद हो जाएगा, मुझे ऐसा करना है, मैंने ऐसा किया है। तो जहां मैं ये अहम भाव जहां जिंदा है, और साधना के फल पर बुराई से तो अहम का श्रृंगार कोई नहीं करता है। स्वामी जी महाराज कहते कि देखो समाज में कहीं भी साइन बोर्ड नहीं देखोगे कि यहाँ पर घूसखोरी सिखाई जाती है, यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग की ट्रेनिंग होती है, ऐसा साइन बोर्ड कहीं देखा है? नहीं देखा। तो बुराई का समर्थन कोई नहीं करता है, मैं बुरा हूँ ये डिक्लेरेशन कोई नहीं देता है, लेकिन भलाई के बल पर हम सत्य से दूर हो जाते हैं, अच्छाई के बल पर अहम भाव का पोषण होता रहता है, इसलिए परिश्रम बन गया। और अंतिम बात क्या है, लग जाए थोड़ा ज्यादा समय शांति से बैठे रहिए, अंतिम बात क्या है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, और वो क्या है कि मैंने अनुभवी संत के मुख से सुना और उनकी कृपा से जीवन के मंगलमय विधान से किसी किसी अद्भुत घड़ी में इस रहस्य का दर्शन पाया। वो रहस्य क्या है कि साधक के भीतर एक लगन है, किस बात का, कैसे भी हो करने वाले चाहे जिस तरह से करें, हमारे भीतर के सब विकार मिट जाना चाहिए, हमारे और उनके बीच में जो दूरी मालूम होती है, प्रतीत होती है नहीं प्रतीत होती है, वो मिट जाना चाहिए, किसी भी प्रकार यह जीवन पूर्ण हो जाना चाहिए। तो ऐसी आवश्यकता जब जगती है साधक में, तो पुरुषार्थी साधक क्या करते हैं, समर्थ साधक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको जो जो सूझता है कि ऐसा करने से अच्छा होगा, ऐसा करने से अच्छा होगा, सब कर डालते हैं जल्दी जल्दी। सब करने के बाद क्या होता है कि उनको अपने से इस सत्य का पता चल जाता है कि भाई ऐसा ऐसा करने से मेरा काम बना, करने से तो बनता ही नहीं है, करते रहोगे तब तक तो सत्य की दूरी रहेगी, तो उनको पता चल जाता है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारा आपका सबका जो परम हितैषी है ना, जो प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरे बच्चे कब संसार के बंधन से मुक्त होकर के हमारे दिए हुए ज्ञान और प्रेम का आनंद लेंगे, इसकी प्रतीक्षा है उसमें। तो ऐसा जो है ना, वो हमारे हर गलत कदम पर भीतर से अपने को ही सुझाव देता रहता है, ऐसे काम नहीं बना, ऐसे काम नहीं बना। तो क्या स्वामी जी महाराज ने कहा कि साधक के जीवन में एक बड़ी शुभ घड़ी आती है। शुभ घड़ी आती है, कौन सी घड़ी? कि करणीय कुछ शेष रहा नहीं, जितना बल चला, जितनी बुद्धि चली, जितनी धन संपत्ति लगा सके सब करके देख लिया, अब करने लायक कुछ बाकी नहीं है। तो अब करने का प्रश्न खत्म हो गया ना, तो अहंकृति शांत होने लगती है। साधक को इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन अनुभवी जन जानते हैं कि जब वो हार जाता है ना कि अब मेरे किए तो कुछ हुआ ही नहीं, अहंकृति शांत होने लगती है। साधक को इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन अनुभवी जन जानते हैं कि जब वो हार जाता है ना कि अब मेरे किए तो कुछ हुआ ही नहीं और करने के लायक कुछ रहा नहीं, तो जहां करना बंद हो गया तो उसकी अहंकृति शांत होने लगती है, अहम भाव उसका गलने लगता है। क्या करें, मेरे किए हुआ नहीं, और अब उन परम हितैषी, परम प्रेमी, परम कृपालु से मिले बिना तो किसी तरह से रहा जाता नहीं। तो अपनी अपने परिश्रम और पराश्रय का त्याग और उस ओर का जबरदस्त खिंचाव। पहले दिन बात हुई थी ना, बड़ा आकर्षण है उसमें, बड़े जोर से खींचते हैं वे अपनी ओर। महाराज जी ने एक जगह पर लिखा है कि शरण्य की कृपा दृष्टि जब शरणागत पर पड़ती है और उसको वे अपनी ओर खींचने लगते हैं, तो उनका आकर्षण इतना मधुर होता है, इतना जोरदार होता है कि शरण्य उससे हटने न हटने के लिए बाध्य हो जाता है, रहा ही नहीं जाता है, एकदम इतनी जोर की खिंचाव मालूम होती है। तो अंतिम बात क्या हो गई कि अपना बल, अपना पुरुषार्थ शांत हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है। और तब भी जो उनसे दूरी है वो सही नहीं जाती है, अब हम नहीं रह सकते तुमसे मिले बिना। तो उधर का इतना जोरदार आकर्षण उसको छू देता है, प्रभु की आनंदमयी विभूतियां, ज्ञान का प्रकाश भी बड़ा सरस होता है और प्रेम का रस तो सरस होता ही है, ये विभूतियां जब साधक को छू देती हैं तो वो अपने आप को भूल जाता है। तो अपने आप को जब भूल गया तो सीमित अहम भाव समाप्त हो गया, तो असीम से अनंत से अभिन्नता हो गई। ये आखिरी कदम है। वहां पहुंच करके तो भक्तजनों ने भक्ति के प्रवाह में अपनेपन के खोने का बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं ही हो गई। जब हम हैं तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाई, प्रेम गली यति सांकरी तामे द्वय न समा।